मेरे अजीज दोस्तों नमस्कार। फ्रेंड्स, फिलहाल आप देख रहे हैं कि पूरे देश में नवरात्रि का पर्व पूरे की पूरे धार्मिक श्रद्धा के साथ मनाया जा रहा है। लोग व्रत उपवास रख रहे हैं, जगह जगह पर पंडाल में देवी की मूर्तियां रखी गई हैं, सुबह शाम आरतियां हो रही हैं और एक अलग किस्म का माहौल पूरे के पूरे देश की चेतना पर छाया हुआ है। जब मैं इसके बारे में सोचता हूं तो सच पूछिए तो हमारे जो पूर्वज रहे हैं, हमारे जो ऋषि मुनि रहे हैं, या यूं कह लीजिए कि हमारे यहाँ सामाजिक और राजनीतिक विधान करने वाले जो चिंतक रहे हैं, उनकी चेतना पर आश्चर्य होता है और लगता है कि सच में वो कितने दूरदर्शी थे। दूरदर्शी ही नहीं थे बल्कि चीजों को, बातों को, घटनाओं को कितनी गहराई से देखते थे और गहराई से देखने के बाद वो सदियों तक चलते रहे, इस तरह का विधान किया करते थे। और फिर जो देवी आराधना का विधान है, मुझे इसी तरह का एक बहुत ही अद्भुत किस्म का विधान मालूम पड़ता है। देखिए, जब हम इसे धार्मिक आधार पर सोचते हैं तो फिर हमारे सामने अलग किस्म के अर्थ निकल कर आते हैं और नो डाउट कि उन सब का जुड़ाव कहीं ना कहीं हमारी भावनाओं से है, हमारी आध्यात्मिक चेतना से भी है, इन सब से है, उदारता से भी है, हमारी सहनशीलता से भी है। लेकिन जब हम इसे बहुत ही यथार्थवादी नजरिए से देखते हैं तो हमारे सामने जो उसके रंग उभर कर आते हैं वो बहुत ही विस्मयकारी होते हैं कि अच्छा, हमारे लोगों ने इतनी गहराई से सोचा था। उदाहरण के तौर पर देखिए, जब हम धर्म की बात करते हैं तो धर्म क्या है? जो हमारे यहाँ का मनुस्मृति है, मैं उसे एक प्रकार का भारत का सबसे पहला सामाजिक संविधान मानता हूँ। सामाजिक कह लीजिए, राजनीतिक भी है, उसमें इस तरह के विधान हैं कि कौन कौन सी सजाएं होती हैं, उस पर क्या वो क्यों मिलती हैं, कैसे दंड विधान होंगे, राज्य की व्यवस्था कैसे होगी, उन सब का भी वर्णन उसमें है। तो मनुस्मृति है, अपने समय का एक संविधान है और उसमें धर्म के बारे में जो परिभाषा दी गई है बहुत ही स्पष्ट है कि जो धारण किया जा सके वो धर्म है, जो धारण करने योग्य है वो धर्म है, यानी कि जिसे धारण नहीं किया जा सकता वो धर्म नहीं है। बहुत ही स्पष्ट रूप से परिभाषा दी हुई है। तो जब हम देवी आराधना को धारण करने योग्य की परिभाषा के आधार पर सोचने की कोशिश करते हैं, जानने की कोशिश करते हैं, तो बहुत ही अद्भुत बातें सामने आती हैं। बहुत लंबी चौड़ी बात करने की स्थिति तो अभी नहीं है, नहीं इतना वक्त है, लेकिन एक जो सबसे महत्वपूर्ण तथ्य है जो विचार करने लायक है और मैं चाहूंगा कि आप सब इस पर विचार करें, वो प्रश्न मैं यहां आप सबके समक्ष रख रहा हूं। नवरात्रि, हम इसे नवरात्रि कहते हैं, कुछ कहीं जगह नव दुर्गा भी कहते हैं, दुर्गा पूजा भी कहते हैं, अलग अलग जगह पर अलग अलग नाम इनके हैं। ठीक है, हमारी जो सांस्कृतिक विविधता है यह उसकी रिचनेस को कहीं ना कहीं बताती है। दोस्तों, मजेदार बात यह है कि ये जो देवी पूजा का जो विधान है ये साल में दो बार आता है। देखिए, एक तो अभी आ गया, एक फिर रामनवमी के आसपास आता है, दो बार आता है और लगातार 8 दिन 9 दिन का यह विधान है, कहीं 8 दिन कहीं 9 दिन, इस तरह का यह विधान है। मैं सोचने लगा कि हमारे यहां तो देखिए देवी हैं तो देवता भी हैं, सोच करके देखिए हमारे यहां देवी हैं और देवता हैं, और सबसे बड़ी बात यह है कि हमारे यहां जो देवता हैं या देव हैं, जो ईश्वर हैं, वो इकलौते नहीं हैं, बकायदे वो दाम्पत्य जीवन जी रहे हैं। इस पर सोचा जाना चाहिए, वो दाम्पत्य जीवन जी रहे हैं, मतलब उनके लिए भी बिल्कुल वही विधान रचे गए हैं, किए गए हैं जो भौतिक विधान है, जो संसार के विधान है, यानी कि वे भी संसार के नियम से परे उस तरीके से नहीं है। हमारे ऋषि मुनियों को आप देख लीजिए, ज्यादातर दाम्पत्य जीवन जी रहे हैं। तो जब आप दाम्पत्य जीवन को जीवन का आधार मानकर चलते हैं, जो जैविक रूप से है भी, तो सीधी सी बात है कि उसके दो रूप हैं, एक पुरुष का रूप है और दूसरा महिला का रूप है। सामान्य तौर पर जो हमारी सामाजिक व्यवस्था मिलती है, जो राजनीतिक व्यवस्था मिलती है, उसमें ऐतिहासिक काल से पुरुषों का प्रभुत्व रहा है। हो सकता है कि इसका मूल कारण उनकी शारीरिक क्षमता रही हो, लेकिन भारत ने क्या विधान किया? आप देखिए कि संतुलन बनाए रखने के लिए भारत ने कितने जबरदस्त विधान किए हुए हैं। देवी आराधना का विधान किया हुआ है और साल भर में मोटे तौर पर आप कह लीजिए 18 दिन का विधान किया हुआ है। मैं आपसे एक प्रश्न पूछता हूं, क्या किसी देवता के नाम पर या किसी ईश्वर के नाम पर राम है, कृष्ण है, विष्णु है, शिव है, ये सब हमारे बहुत स्वयंभू हैं, मतलब देव हैं, ईश्वर हैं, इनके नाम पर इतने लंबे लंबे विधान हैं? आप बताइए कि लगातार आप 9 दिन तक व्रत उपवास करें राम के नाम पर, कृष्ण के नाम पर, शिव के नाम पर, तपस्या की बात मैं नहीं कर रहा हूं, इस तरह के विधान की जो गृहस्थ के लिए है, यानी जो आम लोगों के लिए है। आप देखिए कि देवी की जो आराधना है आपको आम घरों से लेकर के ऊपर नीचे सब तरफ मिलेगा। क्या कोई ऐसी व्यवस्था है? तो मैं सोचता हूं कि ऐसी व्यवस्था क्यों नहीं की गई पुरुष देवताओं के लिए, या सीधे हम देवताओं भी कहें तो उनके लिए ऐसी व्यवस्था नहीं की गई, लेकिन देवी आराधना के लिए ऐसी व्यवस्था की गई। मुझे लगता है इस पर विचार किया जाना चाहिए। और हमारी जितनी भी देवियां हैं, आप देखिए माँ दुर्गे हों, काली हों, अलग अलग हमारे भावों का प्रतिनिधित्व करते हैं, जो हमारे जीवन के जो स्थायी भाव हैं उनका वो प्रतिनिधित्व करते हैं। और मजेदार बात है कि देवताओं से कोई स्थायी भाव उस तरह से विचारों से जुड़ा हुआ नहीं है, भावनाओं से तो जुड़ा हुआ है, लेकिन स्थायी भाव तो हमारे यहां व्यवस्था में है, लेकिन स्थायी विचार हमारे यहां व्यवस्था में नहीं है। यानी कि भावनाएं ज्यादा प्रबल है, जीवन के लिए भावनाएं ज्यादा महत्वपूर्ण है। सीधी सी बात है कि चूंकि देवियों का जुड़ाव भावनाओं से है, इसीलिए देवियों की प्रबलता भी भारतीय समाज ने स्वीकार की है और धार्मिक स्तर पर स्वीकार की है। दोस्तों, ये कम बड़ी बात नहीं है, बहुत बड़ी बात है। इन सब पर आप भी विचार कीजिए तो देखेंगे कि आपको भी कुछ नए नए तथ्य शायद हासिल हो सके। तो दोस्तों, आज बस इतना ही। एक अंत में एक छोटी सी सूचना है, और सूचना यह है कि जो मेरी पत्नी डॉक्टर प्रीति अग्रवाल हैं, वो जीवन से संबंधित विषयों पर परामर्श देती हैं, वो साइकोथेरेपिस्ट भी हैं। तो जो भी अपने जीवन से संबंधित समस्याओं पर उनसे विचार विमर्श करना चाहता है, सलाह चाहता है, तो वह उनसे फोन पर बात कर सकता है। जो समय है वह है शाम को 6 बजे से लेकर के रात 9 बजे तक, समय का थोड़ा आप ध्यान रखें। और उनका जो मोबाइल नंबर है वह मैं आपको बता रहा हूं, उनका मोबाइल नंबर है 9644624449। मैं नंबर रिपीट कर रहा हूं, 9644624449। जो समय है शाम को 6 बजे से 9 बजे तक, एवरी डे किसी भी दिन आप बात कर सकते हैं। और जो विषय है वह है जीवन से संबंधित समस्याएं। तो दोस्तों, इसी के साथ ही अब आज के इस लाइफ मैनेजमेंट को यहीं समाप्त करना चाहूंगा। 2 दिनों के बाद आप सबसे फिर मुलाकात होगी, तब और बातें करेंगे। तब तक के लिए मेरी शुभकामनाएं स्वीकार करें, मुझे इजाजत दें। नमस्कार।